ओम शांति। लगता है आवाज में आने का किसी को मन नहीं है। ओम शांति। विकारों से तपती हुई दुनिया से और प्रकृति की धूप से तपती हुई दिल्ली से आप सभी यहाँ प्यारे बाबा के घर में, आबू अब्बा के घर में पधारे हैं और तन मन दोनों की शीतलता प्राप्त कर रहे हैं और करेंगे। आपके आगमन पर हमारे सभी मधुबन निवासी भी बहुत बहुत हर्षित हैं। वतन से, मूल वतन से प्यारा शिव बाबा आप सभी के ऊपर सुनहरे पुष्पों की वर्षा करके अव्यक्त वतन से ब्रह्मा बाबा, मम्मा और एडवांस पार्टी की हमारी सभी दादियां, दादाएं आप सभी के ऊपर वरदानों की वर्षा करके हमारे शशि दीदी, शिलू दीदी आप सभी की स्नेह से पालना करके बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। आबू की इन वादियों में, अरावली की पहाड़ियों के मध्य में प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित ये आबू अब्बा का घर, आप सभी का अपना घर, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिवादन है। हम सभी के बीच में हमारे आदरणीय शिलो दीदी पहुंचे हैं, उनका हम सभी एक हाथ की ताली के द्वारा स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आज भट्टी का शुभारंभ है और आप सभी बड़े महान लक्ष्य से यहां पहुंचे हैं कि हमको भट्टी करनी है, तपस्या करनी है, आंतरिक परिवर्तन करके ही जाना है। तो इस भट्टी का वास्तव में लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उसके बारे में हम सभी को शिलू दीदी बताएंगी। यूं तो आप सभी शिलू दीदी को पहचानते हो, कौन नहीं पहचानते हैं, हाथ खड़ा करें। कोई एक दो हैं, बाकी सभी पहचानते हैं। फिर भी मैं उनका संक्षिप्त में परिचय दे देना चाहूंगी। आपने मुंबई से 12 वर्ष की अल्पायु में ही ये ज्ञान प्राप्त किया और अपना एजुकेशन भी मुंबई से ही प्राप्त किया। आपने करीब 1969 से अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवार्थ बाबा के यज्ञ में समर्पित किया और आपको डायरेक्ट भगवान का वरदान है, आपकी जीवा पर मां सरस्वती विराजमान है और टीवी की सेवा आपके द्वारा ही पहले पहले आरंभ हुई और इसी कारण से सभी शिलू दीदी जी टीवी वाले इस रीति से उनको पहचानते। आपने बाबा के ज्ञान को देश विदेश में बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों तक पहुंचाया। और आप एक बहुमुखी प्रतिभा हैं, आपके अंदर इतनी विशेषताएं भरी हुई है, भले आप एक स्थान पर यहां बैठे हैं लेकिन वामन अवतार की तरह आप शांतिवन, आनंद सरोवर, मानसरोवर, ज्ञान सरोवर और पांडव भवन का तो करते ही हैं। सभी जगह आप भट्टियों और राजयोग शिविर को मैनेज करते हैं। बहुत ही कुशलता पूर्वक आप सभी कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। तो ऐसी महान विभूति हम सभी के बीच में विराजमान हैं, उनका स्वागत करते हुए फिर से हम एक हाथ की ताली बजाएंगे, क्योंकि आज से हम मौन रहना सीखेंगे ना, ताली में आवाज होती है। इसलिए अभी हम आपके ही मुख द्वारा सुनेंगे इस भट्टी का लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है। आदरणीय राजयोगिनी शिलू दीदी जी,
पिता बहन आप भी अपना परिचय दो। परिचय हाँ दे दो अभी दे दो ना परिचय, आप साथ में रहेंगे ना।
ओम शांति। दीदी की आज्ञा है कि मैं भी अपना परिचय दूं। शरीर का नाम गीता है और जितनी शरीर की आयु है उससे 6 महीने ज्यादा ज्ञान की आयु है। और मैं वैसे दिल्ली के पास मेरठ से ही बिलोंग करती हूँ। वर्तमान समय गुजरात में पिछले 40 वर्षों से नवसारी में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन तपोभूमि, वरदान भूमि, बाप दादा की कर्म भूमि, परिवर्तन भूमि, में आए हुए आप सभी भाई बहनों का हमारी ओर से भी बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आपने जैसे ही पांडव भवन में प्रवेश किया आपको ये माला मिल गई है ना, सबने पहनी है माला, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं माला पहनकर। अगर इसको विजय माला कहें तो भी गलत नहीं होगा। आप कितने कितनी बातों से आप पार करके यहाँ मधुबन पहुँचे होंगे, कई विघ्न भी आए होंगे, रुकावटें भी आई होगी, कई बातें आपके सामने आई होगी, लेकिन आप सब ने आपने सब दरकिनार कर आखिर मधुबन में पहुँच गए। तो पहली विजय तो आपने प्राप्त कर ही ली, इसलिए यह माला आपको मिल गई। फिर आपने देखा होगा जो बैज में नाम लिखा है, भट्टी का नाम क्या है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, क्या बोलो, बेहद की वैराग्य वृत्ति अंतिम पुरुषार्थ की ओर, योग तपस्या भट्टी। तो आप सब योग तपस्या भट्टी में पधारे हैं और बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के आए हैं कि हम यहाँ से परिवर्तन होकर जाएंगे। उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने जीवन में पूर्ण रूप से भरेंगे और जो बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है उसको हम हासिल करेंगे। तो लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है और उद्देश्य तो उनसे भी ऊंचा है। वैसे तो कहेंगे हमारा उद्देश्य क्या है, दुनिया वाले पूछते ना आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है, तो हम क्या जवाब देते हैं, क्या है हमारा उद्देश्य जी? मनुष्य से देवता बनना, यही है ना उद्देश्य। यहाँ हम आते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, लेकिन मनुष्य से देवता बनने के बीच में बहुत कुछ इसको माइलस्टोन्स कहेंगे, वो है जैसे मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर माइलस्टोन्स आते हैं, अभी इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर और अभी पहुंचे कि पहुंचे, तो पता चलता है हम मंजिल के कितने निकट पहुंचे हैं। तो हमारा मूल मकसद तो है मनुष्य से देवता बनना, लेकिन देवता बनने से पहले हमें क्या बनना होगा? हम आए तो शूद्र रूप में ही आए, फिर शूद्र से हम ब्राह्मण बने, फिर हमें कहा गया कि हमको बाप समान बनना है, ब्रह्मा बाप समान बनना है, उसके लिए फॉलो फादर करना है। ब्रह्मा बाप समान बनकर हमें संपूर्ण बनना है, ये सब बीच में माइलस्टोन्स है, मील के पत्थर आते ना, मील के पत्थर, तो ये सब क्रॉस करने हैं। हमें बाप समान बनना है, संपूर्ण बनना है, फिर फरिश्ता बनना है, फिर घर वापस जाना है और फिर सतयुग में आना है। ऐसे नहीं बस अभी आए और बन गए देवता, इतना जल्दी तो नहीं होगा। और उसके लिए जो 63 जन्मों के संस्कार हैं उन सब में परिवर्तन लाना है, और आदि अनादि संस्कार जो आत्मा के हैं उन संस्कारों को स्मृति में लाकर उनका पहले स्वरूप बनना है। तो स्मृति से ही हम स्वरूप बनेंगे, क्योंकि समर्थी आती है। इसीलिए बाबा ने हमें यह बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है, परंतु उसके लिए क्या करना होगा? बेहद की वैराग्य वृत्ति, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना वैराग्य वृत्ति के हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उसके लिए ये भट्टी है ताकि वो संस्कार हमारे सहज मिट जाए। मधुबन का वातावरण ही आपको दुनिया से बिल्कुल अलग कर देगा। यहाँ पर कोई बाह्य वातावरण नहीं है, न कोई आगे पीछे, यहाँ कोई दुकान है जहाँ पर आप कुछ खरीदारी भी कर सको, कोई आकर्षण हो, बस चार दीवारों में है और यहाँ ही चार धामों की का विचरण करना है, ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव करना है। सब दादियाँ जिन्होंने यहाँ तपस्या की उस तपस्या के वाइब्रेशंस का अनुभव करना है। तो इस भट्टी में हमें पहले पकना होगा, क्योंकि पककर ही हम परिवर्तित होंगे। अग्नि में भट्ठे में अग्नि पकाते हैं, अग्नि जलाते हैं, तो अग्नि क्यों जलाते हैं? क्योंकि अग्नि में कुछ भी चीज पड़ती है वो चीज बदल जाती है, उसी रूप से बाहर नहीं आती है वो चीज। कितने मिसाल देते हैं कि भाई मिट्टी है, मिट्टी की ईंट बनाई और उसको भट्ठे में पकाया तो क्या हो जाता है? ईंट इतनी मजबूत हो जाती है कि अगर उसको गिराओ तो भी टूटेगी नहीं, इतनी मजबूत हो गई है तो मिट्टी, लेकिन इतनी मजबूत हो जाती है। आग में सोना डालो, कितनी भी खाद उस सोने में हो, वो खाद धीरे धीरे पिघलती जाती है, पिघलती जाती है, और सोना शुद्ध बन के तैयार हो जाता है। फिर इसमें कोई भी कठोर चीज डालो, डालते हैं ना कोई कठोर चीज डालते हैं, आलू, बैंगन, टमाटर, आग में डालने से क्या हो जाता है, नरम हो जाता है, बर्था बन जाता है ना, बर्था बनाते हैं तो आग में ऐसे डालते हैं। और कोई भी नरम चीज डालो तो मजबूत हो जाएगी, कोई कठोर चीज डालो तो वो मुलायम हो जाएगी, और किचरा डालो तो क्या होगा, वो वेपर, वो सारा धुआं बन जाएगा और सारा किचरा कार्बन के रूप में उड़ जाएगा। तो हम देखते हैं जैसे आग में परिवर्तन शक्ति है, इसी प्रकार यह बेहद की योग अग्नि में परिवर्तन शक्ति है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं ज्वालामुखी योग। अब उस रूप से तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन मन बुद्धि बिल्कुल दुनिया की बातों से न्यारा हो, उसमें मुख का भी मौन तो चाहिए ही, साथ में मन का मौन भी चाहिए, और तीसरा किसका मौन चाहिए, मोबाइल मुख का मौन, मन का मौन और मोबाइल का मौन, तो तीन म का मौन चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है, तभी हम सच्ची तपस्या कर सकेंगे। तो पहले तो हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण कैसे बने, ब्रह्मा के मुख से हमने जन्म लिया, हम यही नशा दिखाते न, हम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे सच्चे ब्राह्मण हैं। इस संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा हमारा अलौकिक जन्म हुआ है, और हमने जैसे ही कहा मेरा बाबा, उस दिन भी बाबा ने कहा ना, मेरा बाबा क्या है, ये चाबी है, बेहद के खजानों की चाबी है। तो जैसे ही कहा मेरा बाबा, तो वो चाबी हमें मिल गई खजानों की। कितने खजाने भगवान ने हमें दिए हैं, गिनती करते जाओ करते जाओ, अखुट खजाने हैं। फिर बाबा गिनती भी करते हैं कितने खजाने मिले, ज्ञान गुण शक्तियां ये तो खजाने है ही, फिर उसके साथ कितने और खजाने बताए, समय ये खजाना है, हमारा श्वास, हमारे संकल्प, हमारी शक्ति, एक एक शक्ति वो भी एक खजाना है, अष्ट शक्तियां बाबा बताते हैं, वो सब हमारे खजाने बन जाते हैं, हम उनके मालिक बन जाते हैं। तो मानो कि वो चाबी हमें मिल गई खजानों की, अब इन खजानों से हमें खेलना है, इनका सदुपयोग करना है, इनको सफल करना है, सफल करो और सफलता को पाओ, बाबा यही वरदान हम बच्चों को देते हैं। और ये ऐसे खजाने हैं कि जितना आप लुटाओ उतने आपके बढ़ते जाएंगे, धन दिए धन ना खुटे, ऐसा अनुभव होता है इन खजानों से। वो खजाने तो देने से कुछ तो कम होंगे, लेकिन ये खजाने ऐसे खजाने हैं जितने बांटो उतना उतने बढ़े। तो ऐसे खजाने भगवान हमको देते हैं, दान करते जाओ और धनवान बनते जाओ, पुण्य भी साथ साथ कमाते जाओ, और ये पुण्य की पूंजी आत्मा अपने साथ ले जाएगी। वैसे तो कहते हैं हम हाथ खाली आए हैं, हाथ खाली जाना है, लेकिन हम जानते हैं कि हाथ खाली न आए हैं न जाना है। कैसे, जब जाएंगे तो हम क्या कहते हैं कि ये आत्मा अपने साथ कमाई करके गई है, पुण्य बहुत कमाए हैं, दुआएं बहुत कमाई है, दुआएं भी एक बहुत बड़ा खजाना है। इतनी दुआएं कमाई है, ये दुआएं इनके साथ गई, और जहां भी ये आत्मा जाएगी उन दुआओं के आधार पर बहुत सुंदर जन्म इनको मिलेगा, पुण्य कमाया है। तो इसीलिए साथ में पुण्य जाता है, कमाई जाती है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं, आत्मा भाग्य लेकर आई। तो आत्मा वो पुण्य के संस्कार ले गई और बच्चा बन के आई, भाग्य लेकर के आई। तो ऐसा ब्राह्मण जीवन है हम सब बच्चों का। और इसीलिए बाबा कहते हैं, कदम कदम पर तुम्हें क्या होना चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए कि कदम कदम पर हम कमाई कर रहे हैं। बिंदी लगाते जाओ, एक के साथ जीरो 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 लगाते जाओ, कमाई होती जाएगी। तीन बिंदी बाबा ने उस दिन कही, आत्मा बिंदी, शिव बाबा बिंदी और ड्रामा बिंदी। ये तीन बिंदी लगाते जाओ शिव बाबा के साथ। हाँ, बिंदी पहले नहीं, बाद में, पहले शिव बाबा फिर बिंदियां लगाते जाओ। अभी आपको मालूम होगा, दो दिन पहले ही भारत के जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर भ्राता राजनाथ सिंह जी, वो आए थे। बहुत एक अच्छी बात उन्होंने कही, कहा देखो अहंकार में बिंदी आती है, अहंकार ना, तो वो बिंदी है, उस बिंदी का कितना महत्व है। लेकिन वो बिंदी का महत्व तब है जब पहले नम्रता हो, निर्माणता हो, नम्रता हो। अगर अहंकार आ गया तो वो बिंदी काम की नहीं है। बिंदी तब काम की है जब हम नम्र बने। हम कितने भी बड़े बन जाएं लेकिन अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। और हमने देखा उनका जीवन भी ऐसा ही है, भले रक्षा मंत्री है, सेंट्रल मिनिस्टर है, बहुत उनका महत्व है, मान है, लेकिन इतने निर्माण है, इतने नम्र है, जो बात मत पूछो कभी भी। और आए भी तो इतनी महिमा की संस्था की, जो बात मत पूछो। उसके पहले हमारे होम मिनिस्टर आए थे, ये क्या नाम, अमित शाह जी, उन्होंने भी इतनी महिमा की, काम आते ही हमको एक इतनी असीम शांति का अनुभव हुआ, इतने पवित्र वातावरण का अनुभव हुआ। क्योंकि वो जिस था जहाँ से आते हैं वहाँ कैसी स्थिति होगी, तनावपूर्ण, और बाबा के घर में आए तो उनको असीम शांति का अनुभव हुआ। अभी दो दिन के बाद 24 तारीख को फिर एक और सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, वो एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है। तो एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, ये पता नहीं नाम, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर है, वो भी आ रहे हैं, वो भी सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, और वो भी सदा वो भी कांटेक्ट में है। आज मृत्युंजय भाई ऊपर आए थे, वो बता रहे थे कि सारे अभी सब आना चाहते हैं, मधुबन माउंट आबू आना चाहते, आकर के यहाँ का अनुभव करना चाहते हैं, क्योंकि कई तो आ चुके हैं, गवर्नर जाना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर जाना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर तो आ ही चुके हैं, और भी ये सब के अंदर आकर्षण है ब्रह्मा कुमारियों का। और यहाँ तक ये सब कहते हैं, हम अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप लोगों के साथ मिल करके हम जो भी करेंगे वो कर सकते हैं, हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तो वो भी महसूस करते कि ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत ही एक बड़ी सेना है। तो बाबा ने तो ये शिव शक्ति पांडव सेना तो तैयार कर ली है, लेकिन बाबा कहते अंत में यही सेना होगी जिसके आगे सरकारें भी झुक जाएगी, तदमस्तक हो जाएगी, और यही कहेगी आप ही हैं, आप ही हैं, हाँ आप ही हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सब जवाब दे देंगे, सब जवाब दे देंगे। और कैसे बाबा के झंडे का ध्वज जो है वो लहराएगा सारे विश्व में, वो भी समय आएगा। अभी तो यही कहते हैं आप भी हैं, और आखिर में क्या कहेंगे, आप ही हैं। भी बदल करके ही हो जाएगा। तो वो बाबा ने तो पहले से ही कह दिया, पहले तो पता नहीं क्या क्या कहते थे, जादू करती है, ये करती है, वो करती है, अभी सब कुछ बदल गया है, सारा वातावरण ही बदल गया। और ही वो उत्सुक है कि ब्रह्मा कुमारी हमें निमंत्रण देवे तो हम माउंट आबू जाएं। तो ये अंतर पड़ गया है, क्यों? क्योंकि बाबा के बच्चे इतने तैयार हो गए हैं, लेकिन अब और भी बहुत बाकी है। बाबा यही कहते रहते हैं कि और भी बहुत बाकी है, बहुत सुधार और भी चाहिए। तो वो कब होगा? क्योंकि अंत के नज़ारे तो हम देख ही रहे हैं, जो धर्म ग्लानी की निशानियां हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, जितने भी ये सत्ताएं हैं वो सब हिल रही है सत्ताएं। हाँ, उसका डिटेल हम हमारे से ज़्यादा तो आप जानते हैं, समाचार सुनते हैं, सब हिल रहे हैं, लेकिन बाबा के बच्चे इतने मजबूत हैं। विदेशों में तो और ही डर ज़्यादा है, भारत में फिर भी इतना डर नहीं है, विदेशों में तो बहुत डर ज़्यादा है, कहीं भी एटम बम उनके ऊपर गिर न जाए, इतना है। और भारत में तो जो बाबा ने कहा है गृह युद्ध, वो भी तैयारियां देख रही है ना, बंगाल में क्या हालत हो गई है, गृह युद्ध है पूरा, ऐसी स्थिति बन गई है। और यहाँ तो बाबा कहते रक्त की नदियां बहेगी, तो रक्त की नदियां पहले बहेगी, फिर दूध घी की नदियां बहेंगी, पहले तो रक्त की नदियां बहेंगी। और विदेशों में तो एटॉमिक वॉर होगा, वहाँ तो सब जल कर राख हो जाना है। तो बाबा ने ये पहले ही कह दिया, 1936 में ही बाबा ने दिव्य साक्षात्कार किए, और उस समय जो कुछ थोड़ा बहुत हुआ तो बाबा कहते थे ये तो रिहर्सल है, लेकिन अभी रिहर्सल नहीं होगा, रिहर्सल तो बहुत हो चुकी, अभी तो फाइनल। पहले कि हम कहते थे विनाश विनाश विनाश, तो दुनिया वाले कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियां तो सारा टाइम विनाश विनाशी कहती है। अभी हम नहीं कहते हैं, अभी वो कहते हैं, वो कहते हैं ना, ज्योतिषी कहते हैं 2025 में विनाश, हाँ ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या कहते ही रहते 2025 के लिए। और बाबा कहते हैं कि हम विनाश नहीं कहते, हम कहते स्थापना, स्थापना सतयुगी दुनिया की स्थापना। किसी पत्रकार ने हमारी मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उनसे पूछा कि आपका क्या विचार है, कब होगा विनाश? तो उसने कहा आप हमसे ये विनाश के बारे में नहीं कहो, क्योंकि हम तो विनाश करेंगे नहीं, वो तो राजनेताओं के हाथ में है बटन, साइंटिस्ट के हाथ में है, हम तो विनाश करने वाले नहीं हैं। तो वो विनाश कब होगा वो उनसे पूछो, वो कब बटन दबाएंगे, है ना, बटन दबाने की केवल बात है, बाकी तो सब कुछ तैयार है, लेकिन हम उस विनाश के लिए निमित्त नहीं है, हम स्थापना के लिए निमित्त है। हाँ ये जरूर है कि विनाश ज्वाला इसी यज्ञ से प्रज्वलित हुई। बाबा ने उस दिन भी कहा जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा तन में, तब से विनाश की चिंगारी भी शुरू हुई 1936 में। यहाँ शिव बाबा का कार्य शुरू हुआ ब्रह्मा द्वारा, और वहाँ शंकर का पाठ शुरू हुआ पश्चिमी दुनिया में। तो मानो स्थापना और विनाश ये साथ साथ हुआ। तो भी इतनी सब तैयारी उनकी हो चुकी है, कभी भी एटम बॉम्ब गिरा सकते हैं, तो भी क्यों नहीं कर रहे हैं? कारण क्या है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ब्राह्मण तैयार नहीं है। हम ब्राह्मण बच्चे तैयार नहीं हैं, तो वो कैसे विनाश करेंगे? वो विनाश का बटन तब दबाए जब ब्राह्मण तैयार हो। बाबा मिसाल देते हैं ना, अभी अंदर पर्दे के अंदर सब एक्टर्स है, अभी तैयार हो रहे हैं, सब तैयार हो रहे हैं, कोई भी अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो कर्टेन वो पर्दा हटाएंगे कैसे? पर्दा तब हटे जब सब एक्टर्स तैयार हो। तो सतयुग के पूरे एक्टर्स तो तैयार हुए ही नहीं है, तो इसीलिए पर्दा कैसे खुलेगा, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए युद्ध एकदम अब होने जा रही है और फिर रुक जाती है। तो रुक क्यों जाती है? क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है। तो बाबा ने ये भी कहा है कि आखिर धीरे 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 वो अति तक जाएगा, तमो प्रधानता की अति तक जाएगा और यहाँ सतो प्रधानता के नजदीक जाएगा। नई झाड़ का कलम लग रहा है। कई कहते हैं ना, आप लोग ब्रह्मा कुमारियां इतनी तपस्या कर रही हो, इतना ये सब कर रही हो, तो दुनिया और बिगड़ती क्यों जा रही है? तो क्यों बिगड़ रही है? उसको बिगड़ना ही है। ये नई कलम लग रही है, ये नई कलम में हमें लक्ष्य मिलता है कि हमको सतो प्रधान बनना है। वहां तो कोई लक्ष्य ही नहीं है, यहाँ तो बड़ा लक्ष्य भगवान ने दिया है, बेहद की वैराग्य वृत्ति लाकर घर जाना है, सब कुछ भूलना है, नष्टो मोहा बनना है, संपूर्ण बनना है। वहां तो ये कोई लक्ष्य देता ही नहीं है दुनिया में। तो भगवान ने हमें इतना ऊंचा लक्ष्य दिया है, तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है? आज हमारा शरीर छूट जाए तो कौन सा पद मिलेगा? बाबा बार बार हमें याद दिलाते, कौन सा पद पाएंगे? हर एक अपने दिल से पूछे, आज अगर मेरा शरीर छूट जाए तो मुझे कौन सा पद मिलेगा? इसलिए बाबा कहते अपना चार्ट देखो। तो यहाँ आपको अपना चार्ट भी देखना है, बाबा को पत्र भी लिखना है, बाबा से रू रिहान भी करनी है, चारों धामों की यात्रा भी करनी है, और हमारे जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उनसे आप क्लासेस भी सुनेंगे। आप शांतिवन में तो आते होंगे, वहाँ तो हजारों की सभा होती है, और हजारों की सभा में आप भले पता नहीं कहाँ कहाँ बैठते होंगे और क्लास सुनते होंगे, पर यहाँ तो आप कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही हॉल में आप क्लास सुनेंगे और यहाँ ही अनुभव करेंगे, बाहर गेट के बाहर भी नहीं जाना है। अगले दो दिन तो पूरा ही आप पैक्ड रहेंगे, सुबह से लेकर रात्रि तक वो आपको बताएंगे, सारा प्रोग्राम बताएंगी गीता बहन, लेकिन अब यहाँ ही पैक्ड रहेंगे तो बाहर के वातावरण से भी दूर, नक्की लेक तो बहुत दूर हो जाएगा। हाँ, आखिरी दिन आपको छुट्टी देंगे, आखिरी दिन आज 22 तारीख है ना, 23, 24, 25, आज 22 है ना, 23, 24, 25 तारीख को आपको आधे दिन के बाद छुट्टी देंगे। बाबा की पहाड़ी पर जाओ और नक्की लेक की भी सैर करो, बहुत सुंदर आपको अनुभव होगा। और एक दिन आपको तंदूरी रोटी भी खिलाएंगे, यहाँ वो भी खिलाएंगे, वो आपको सारा प्रोग्राम बताएंगे। और कल सुबह मुरली क्लास के बाद आपका फोटो सेशन भी होगा, तो ये सब बातें आपको और भी डिटेल में बताएंगे। तो ये 3 दिन का प्रोग्राम होगा, लेकिन मन से एकदम दुनिया की निगाहों से दूर, आंखों से तो नहीं देखेंगे लेकिन मन से भी नहीं देखना है, क्योंकि मन की आंखें भी बहुत तेज होती है। जैसे हम मर गए दुनिया से, आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे समझना है बस। तो ये वैराग्य वृत्ति कैसे आएगी, उसके लिए हमें क्या क्या अंदर का पुरुषार्थ करना है? एक तो बाबा कहते हैं हम जीते जी मर गए, बस घर वालों को आज ही फोन करके बता दो हम माउंट आबू में मधुबन में आराम से पहुंच गए हैं, अभी हमें 3-4 दिन कोई फोन न करे, ऐसे हो सकता है? हो सकता है। हाँ, जिन्होंने पहले से ही फोन स्विच ऑफ कर दिया वो हाथ उठाओ। अच्छा, पहले से ही स्विच ऑफ कर दिया है, सच्ची? नहीं तो सारा टाइम वो ट्रैफिक कंट्रोल के गीत एक एक सेकंड के बाद सबके बजते रहते हैं। बिल्कुल स्विच ऑफ करके रखना है। हाँ, कोई जरूरी काम है तो भले, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन स्विच ऑफ करके रखेंगे तो संकल्प भी नहीं चलेगा कि हमको बात भी करनी है फोन पर। क्योंकि वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हम कोई कोई सचमुच दूर हो गए, लेकिन वैराग्य का मतलब है बुद्धि में वो हमें सताए नहीं। जो बाबा कहते हैं मैं और मेरे से परे मेरा कुछ भी नहीं है, अगर मैं हूं तो केवल एक आत्मा हूं, अगर मेरा है तो कुछ है तो वो मेरा बाबा है, बस बाबा से ही मेरे सर्व संबंध है। लौकिकता तो यहाँ पर बिल्कुल ही महसूस नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है लौकिकता पता चलता है, वो बहन ढूंढती रहती है मेरा युगल कहाँ बैठा है, क्लास में पीछे देखती रहती है, और वो ढूंढता रहता है मेरी पत्नी कहाँ बैठी है। हाँ, तो ये भी भान न रहे, हर एक स्वतंत्र है, यहाँ स्वतंत्रता का अनुभव करते जाएं, मेरा कुछ नहीं है संसार में, बस सवेरे उठो अकेले हो जाओ, बस फलाना उठा नहीं उठा, वो अमृत वेला योग में आया नहीं आया आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं कहाँ तक हूँ, मैंने अमृत वेला कितना पावरफुल किया। तो 3:30 बजे से ही आप आना शुरू करना, उसके पहले नहीं आना 3:30, क्योंकि यहाँ पर भालू वालू भी यहाँ घूमते हैं रात को, एक बार एक दो बार तो चीते भी देखे हैं, यहाँ जंगल है चारों तरफ, तो थोड़ा ध्यान भी रखना, अकेले तो घूमना ही नहीं है, अकेले तो कहीं भी नहीं जाना है, अंधेरे में तो बिल्कुल अकेले कहीं नहीं जाना है, अगर जाएं तो संगठन में जाएं और फिर मौन व्रत धारण करके जाएं, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें आपके ध्यान पर हो, बहुत भाग्यशाली हो जो आप बाबा के घर पहुंचे हो। कितनों की अंदर में इच्छा होगी हम जाएं जाएं मधुबन जाएं मधुबन जाएं, और पांडव भवन में रहने का मौका ये तो कईयों को पहली बार मिला होगा। हाँ, जो पहली बार पांडव भवन में रह रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, देखो 50% तो है, बाकी होंगे पुराने जो पहले आके पांडव भवन में रहते थे, बाकी 50% से तो ऊपर है जो पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं। अच्छा, इसमें से जो 10 साल से कम है ज्ञान में वो हाथ उठाएं, 10 साल से कम, अच्छा वो भी है काफी, 10 से 20 साल तक, 10 से 20 साल वाले वो भी काफी है, 20 से 30 साल वाले, अच्छा वो भी है, 30 से 40 साल वाले, अच्छा वो भी है, 40 के ऊपर भी है, 40 के ऊपर भी है कोई, हाँ आप 40 से भी ऊपर, अच्छा वेरी गुड। अच्छा, जो शालीमार बाग के हैं वो हाथ उठाएं, शालीमार बाग माना पूनम बहन ना, पूनम बहन, और जो डिफेंस कॉलोनी के हैं वो हाथ उठाएं, डिफेंस कॉलोनी प्रभा बहन, आप प्रभा बहन है ना, हाँ अच्छा डिफेंस कॉलोनी की, बहुत अच्छा। तो देखो दिल्ली में तो बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी है ना, बहुत जबरदस्त गर्मी है, और यहाँ पर आए तो इस सवेरे तो ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी, दिन में तो यहाँ भी गर्मी है, नहीं तो पहले यहाँ माउंट आबू में कोई पंखे भी नहीं थे, जरूरत ही नहीं होती थी, परंतु अभी भी एसी तो मुश्किल है, फिर भी एसी यहाँ लगाई हुई है, जरूरत होगी तो दिन में एसी चला देंगे, लगाई हुई है हिस्ट्री हॉल में भी, मेडिटेशन हॉल में भी, और ओम शांति भवन में भी कूलिंग सिस्टम है, क्योंकि पहले तो ये जरूरत ही नहीं होती थी, पर अभी जरूरत पड़ने लगी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो दिन में भी यहाँ काफी तपत होती है, परंतु आप अपनी जरूर संभाल करेंगे, पानी भी खूब पियेंगे, और भोजन तो आपको वैरायटी मिलेगा, रोज मिलेगा, उसकी तो कोई बात ही नहीं है, आपको यहाँ और कुछ भी नहीं करना है। सेवाधारी तो आए होंगे आपके साथ, सेवाधारी आए हैं ना, जो सेवाधारी ग्रुप के इस ग्रुप के साथ आए हैं वो हाथ उठाएं, सेवाधारी यहाँ बैठे हैं, तो आपको तो अपनी सेवाएं करनी है, लेकिन फिर भी बीच बीच में समय मिले तो आप आ जाएंगे, और लास्ट आपको परसों सौगात भी मिलेगी बाबा के घर से, वो सौगात भी आप अपने साथ ही रखेंगे। तो ये आपका जो 3-4 दिन का प्रोग्राम ऐसे बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपको अनुभव करना है। तो इसीलिए अभी इस समय तो हम ज्यादा नहीं लेंगे समय आपका, क्योंकि अभी तो आज आए ही हो, जो सवेरे सवेरे आ गए थे वहां तो ठहर, अच्छा सारे सवेरे ही आ गए थे, जो दोपहर को आए हैं वहां तो ठहरे, जो दोपहर को आए बहुत अच्छा। तो आज हम आपका और कुछ भी नहीं करेंगे, हम टीचर्स बहनों का, जो सभी टीचर्स बहनें हैं वो खड़ी हो जाएं, टीचर्स बहनें अंकिता बहन देख लो, ये टीचर्स बहनें ये 1 2 3 4 5 6 7 अच्छा अच्छा हाँ, तो टीचर्स बहनें आप लोग ना इस तरफ यहाँ और यहाँ बैठना, ठीक है ना, और भाई भी जो नीचे बैठ सकते हैं वो यहाँ भी बैठ सकते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। और एक दिन हाँ बैठिए, एक दिन सूरज भाई का क्लास होगा, लेकिन वो दिन में या शाम को नहीं करा सकेंगे, वो रात को कराएंगे। तो उस दिन तो रात्रि को ही 8:45 बजे सूरज भाई का क्लास होगा। कई चाहते ना सूरज भाई का क्लास हो, राजू भाई का क्लास हो, हाँ हमारी गीता बहन का क्लास हो, उषा बहन का क्लास हो। उषा बहन तो अधिकतर बाहर रहते हैं, उनके कई प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन और भाई बहनों के भी क्लासेस यहाँ जरूर होंगे। पर आप एक स्टूडेंट बन जाना बस, चाहे कितने भी आप बिजी होंगे अपने व्यवहार में लौकिक में, परंतु यहाँ आप एक स्टूडेंट है ऐसा अपने आप को समझना। हमारी दादी रतन मोहिनी थी, वो 3 बातें सदा कहती थी, हम अभी जो उनके श्रद्धांजलि अर्पित की उनकी वो 3 बातें याद आई। हमेशा दादी कहती थी मैं तो बाबा की बच्ची हूँ, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तो 80 साल की हो गई, 90 साल की हो गई या 100 साल की भी हो गई, लेकिन कभी भी ये नहीं कहा मैं इतनी बूढ़ी हो गई, मैं तो बाबा की बच्ची हूँ। तो अपने आप को बच्ची ही समझा, बच्ची माना 15 साल के अंदर तक तो बच्ची हो गई ना, तो मैं बच्ची हूँ। तो बच्ची समझ करके सदा वो एक्टिव ही रही, बहुत एक्टिव थी। अभी ये कुछ सालों में ही इनका वो थोड़ा कम हुआ, बाकी तो बहुत एक्टिव थी। फिर दूसरा वो सदा क्या कहती थी, मैं स्टूडेंट हूँ। तो बचपन तो होता है, चलो 15 साल की उम्र तक बचपन हुआ, फिर युवा आ गया और चलो पढ़ाई करते हैं तो 25 साल की उम्र तक पढ़ाई करते हैं, वो भी 25 साल स्टूडेंट हो तो मैं चलो 25 साल। तो कोई अपने को स्टूडेंट भी समझे तो भी अहो सौभाग्य, स्टूडेंट भी तो यंग है बहुत, तो एक्टिव रहेंगे। फिर तीसरा क्या कहती थी, मैं सदा सेवाधारी हूँ। तो सेवाधारी समझने से नम्रता आती है। तो मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सभी जो ओहदे हैं वो बाबा कहते हैं बाबा के घर में नहीं, या हम सब बच्चे हैं, हम सभी स्टूडेंट्स हैं, हम सभी सेवाधारी हैं, बाबा की सेवा में है। दादी जानकी को ये सर्विस शब्द भी पसंद नहीं आता था, दादी को कहते थे ना दादी मैं सर्विस पर जा रही हूँ, दादी कहती सर्विस पर क्या जाना, सर्विस माना गवर्नमेंट सर्विस, बाबा की सेवा में जा रहे हैं तो सर्विस पर जा रही हूँ का मतलब क्या, तो बाबा की सेवा पर जा रही हूँ, ये सर्विस शब्द नहीं कहो सेवा, क्योंकि सेवा कहने से क्या होता है, नम्रता आती है। सर्विस गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट कहते हैं, तो गवर्नमेंट की सर्विस है वो सर्विस ठीक है, पर बाबा के घर में सर्विस नहीं है, यहाँ क्या है सेवा। तो ये जब सेवा भावना भाव आता है ना तो ऑटोमेटिकली नम्रता आती है, ये बहुत नेचुरल रूप हो जाता है। इसलिए सदा यही समझे मैं सेवाधारी हूँ, मैं सदा स्टूडेंट हूँ, मैं सदा बाबा का बच्चा हूँ। तो बचपन ही रहेगा, विद्यार्थी जीवन ही रहेगा, और सदा नम्र हूँ तो सेवाधारी रहेंगे, सेवाधारी समझेंगे तो नम्र ही रहेंगे। और फिर बेहद की वैराग्य वृत्ति इतनी गहरी हो कुछ भी याद ना आए, कुछ माना कुछ भी, मेरा फलाना मेरा फलाना, कुछ भी नहीं, आप मोए मर गई दुनिया। तो ये 3 दिन इन सब बातों से बिल्कुल न्यारे रहना। अगर व्यर्थ संकल्प भी कुछ आए तो बिंदु लगा दो, फुल स्टॉप। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हमारी बड़ी दीदी थी, वो हमेशा कहती थी रोज सुबह जब उठो तो 5 केले खाओ, 5 केले खाओ। कौन से 5 केले खाओ, याद है? कौन से 5 केले खाओ? पहला केला है अकेले आए हैं, ये पहला केला खाओ सवेरे सवेरे उठते ही। अकेले आए हैं, अकेले जाना है, ये दूसरा केला, अकेले जाना है। फिर तीसरा केला, अकेले में, एकांत में, अकेले में अकेला होकर, अकेला माना मन से भी अकेला, किसी भी देहधारी की याद नहीं, अकेला होकर अकेले को याद करना है बस। मैं निराकार आत्मा निराकार बाप से मिलन मना रही हूं, ये है 5 केला खाना। और वो 5 केला अगर रोज सुबह खाए तो बहुत शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी, इतनी शक्ति आएगी, जो दिन भर आप लगे रहेंगे बाबा के कार्य में, सेवा में लगे रहेंगे, कोई भी आपको विघ्न नहीं आएगा। लेकिन सवेरे ये शक्ति भरनी है। वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं ना, सवेरे पेट भर के खाओ, नाश्ता पेट भर के खाना चाहिए। हाँ, सवेरे अगर राजा की तरह खाओ, फिर दिन भर हल्का खाओ हल्का खाओ, रात को तो बिल्कुल हल्का खाओ, पर सवेरे राजा की तरह, दिन में राजकुमार की तरह और रात को भिखारी की तरह। हाँ, माना हल्का, क्योंकि इतने घंटे नींद भी करनी है। तो अमृत वेला ज्ञान का भोजन भी इतना हमारा शक्तिशाली हो, और 5 केले खाओ तो इतनी शक्ति आएगी सारे दिन के लिए। तो ये हमारी हमारी स्थिति रहे, ठीक है ना? तो अभी और तो कुछ आपको कहेंगे नहीं ज्यादा, लेकिन इतना जरूर है कि आप आए हैं तो सब बाकी बातें भूल जाओ। किसी को कुछ याद तो नहीं है? कुछ याद तो नहीं है? कई ऐसे भाई बहने होंगे जो नहीं आ सके होंगे और आप आ गए। कई ऐसे भी होंगे जिनका लास्ट मिनट प्रोग्राम बन गया, उनका कल तक नहीं था, सुबह तक नहीं था, और उनको कहा गया कि एक सीट खाली है, चलो आ जाओ, और आप आ गए। ऐसे थे कोई? ऐसे है, देखो हाथ उठा रहे हैं 2-4 लास्ट मिनट। तो लेकिन हम तो यही कहते हैं कि जो आए वो बहुत 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 भाग्यशाली। तो अपने लिए भले ताली बजाओ, भाग्यशाली, ठीक है ना? तो अभी मैं कहूंगी इनको, आप अभी सुना दो। आपको सारा टाइम टेबल बताएगी 3 दिन का, क्योंकि हम ओनली क्लास में ये सब नहीं बताएंगे, वहाँ टाइम भी नहीं होता है। आपको सारी दिनचर्या है।
आदरणीय श्री लुधिदी ने आप सभी को फ्रेश कर दिया एकदम, रास्ते की थकान दूर हो गई ना? कि लग रही है अभी भी? नहीं लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब फ्रेश होकर के बैठते हैं ना तो निंद्रा देवी हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करती है, और हमारा कनेक्शन बाबा के साथ बहुत सुंदर रीति से जुड़ता है और हम शक्तिशाली बनते जाते हैं।
तो शांति, अभी आपके सामने हमारे सतीश भाई और निरंजन भाई, हल्दर भाई आए, हल्दर भाई, ये 3 भाई आए हैं। सतीश भाई को तो आप सभी जानते हैं, मधुरवाणी ग्रुप के, आप तो आर्ट एंड कल्चरल विंग में के कारण कितनी जगह आप जाते रहते हैं, दिल्ली में भी आए होंगे ना, इनके पास भी गए हैं ना? हाँ। और साथ में हमारे निरंजन भाई, आप भी गीत गाते हैं, हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, और हल्दर भाई आप भी हॉस्पिटल में सेवा करते हैं। अब आपके स्वागत में बहुत सुंदर गीत गाएंगे।
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति,
ओम शांति।
आज तो दिल्ली दरबार लगा है, कितना सुंदर सजा है। यहाँ मधुबन महातीर्थ पर आने का अवसर भाग्य से मिलता है और इस बगिया में आकर सभी का मन खिलता है। और आज तो शालीमार बाग आया, पूनम दीदी लेकर आई हैं और प्रभा दीदी डिफेंस कॉलोनी को भी साथ में लाई हैं। आप सबके खुशी में बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। बहुत जोरदार तालियों के साथ आप अपना स्वागत स्वीकार करें।
आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे बिराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। कल राजधानी थी आज भी राजधानी है, होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है। बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है, होगी कल राजधानी फिर आज भी राजधानी है। बाबा मम्मा दादियों ने लिखी दिल्ली की कहानी है। बनाने फरिश्तान फिर से, बनाने फरिश्तान फिर से, उमंगों में सब नाचे हैं। आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे बिराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में। शालीमार बाग आया कृष्णा की याद आई है, शालीमार बाग आया कृष्णा की याद आई है। सात पूनम दीदी पूनम की चांदनी बिखराई है, शालीमार बाग आया कृष्णा की याद आई है। सात पूनम दीदी पूनम की चांदनी बिखराई है। डिफेंस कॉलोनी वाले, डिफेंस कॉलोनी वाले प्रभा पहन से प्रभात पाते हैं। आज तो, आज तो, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं। दिल्ली दरबार के राजे महाराजे बिराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में।
बनिए यादगार भट्टी, तपस्या ऐसी करनी है, बनिए यादगार भट्टी, तपस्या ऐसी करनी है, वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है, बनिए यादगार भट्टी, तपस्या ऐसी करनी है, वो 14 वर्ष की भट्टी 4 दिन में ही करनी है। सभी मधुबन निवासी हम, सभी मधुबन निवासी हम, दिलों से दुआ लुटाते हैं, आज तो आज तो आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, दिल्ली दरबार के राजे महाराजे विराजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं, आज तो आपके स्वागत में खुशी के बाजे बाजे हैं।